अंश हैं थे परमात्मा प्यार की दिव्य आभा, योगयुक्त चित्त, स्नेह की दृष्टि, ज्ञान से व्रोतप्रोत, शीतल शांतवाणी, ऐसे हैं हमारे आदरणीय रामलोचन भाई जी। भाई जी, आपका इस बेहद सभागार के बेहद मंच पर दिल से स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। बहुत सुंदर और अति आवश्यक विषय, मैपन का विषय। एक मैपन जो फरिश्ता बनकर उड़ाता है, दूसरा मैपन जो कोई और दिशा में ले जाता है। ऐसे बहुत सूक्ष्म और आवश्यक विषय को लेकर आए हैं आदरणीय रामलोचन भाई जी। भाई जी का परिचय है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आपका जन्म हुआ। 1971 में कलकत्ता से आपको बाबा का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और तुरंत निश्चय बुद्धि बनकर समर्पित जीवन जीने का दृढ़ संकल्प किया और वह संकल्प साकार भी हुआ। वर्तमान समय वीआईपी डाइनिंग की सेवा संभाल रहे हैं, देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, भट्टिया, राजयोग शिविर तथा और भी धारणायुक्त क्लासेस द्वारा आप सभी ब्राह्मणों को तथा अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते रहते हैं। ऐसे भाई जी से हम निवेदन करते हैं, आज हमें मैपन का त्याग और मैपन की धारणा, मैपन का त्याग और मैपन की धारणा, इस विषय से लाभान्वित करेंगे आदरणीय रामलोचन भाई जी।
ओम शांति। आप सभी बाबा के श्रीमत प्रमाण चलने वाले बाबा के हर बोल को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने वाले महान बाबा, हम आपसे यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बन जाए, क्योंकि ये लास्ट स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनती है तब आत्मा कर्मातीत के नजदीक पहुंचती है। तो हमें इन तीनों रूपों में निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, इन तीनों रूपों को स्वरूप में लाने के लिए तीन प्रकार का मैपन है। जो दो मैपन का त्याग करना है, एक मैपन को धारण करना है, वो तीन मैपन है। पहला है ते भान का मैपन, दूसरा है दिल शिकस्त का मैपन, और तीसरा है आत्मा का मैपन। देहभान का मैपन, दिल शिकस्त का मैपन और आत्मा का मैपन, इन तीनों मैपन में आने से क्या नुकसान होता है और धारण करने से क्या फायदा होता है वो आपको बताते हैं। पहला है, जब शरीर का देह का मैपन आता है, एक है देह भान, एक है देह अभिमान, दोनों में अंतर है। देह भान तो देवताओं को भी होता है। होता है या नहीं होता है? देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं या देह का भान होता है? जो कहते हैं देवताओं को देह का भान होता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, कोई नहीं, एक दो हैं। अच्छा, बाकी सब कहते हैं आत्म अभिमानी देवताएं होते, लेकिन नहीं, देवताओं को देह भान होता है। ये समझना, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा नौकर है, ये क्या है? देह भान है या नहीं है? तो ये सतयुग में समझेंगे या नहीं समझेंगे? देह भान है, लेकिन संगम पर देह भान से देह अभिमान में आ जाते हैं, और सतयुग में देह भान होते हुए भी इस समय का जो आपने अशरीरी होने का अभ्यास किया है, जो गुण शक्तियां धारण की है वो मर्ज रूप में प्रैक्टिकल होगी, इमर्ज नहीं होगी। मैं आत्मा हूं ये ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आत्मा के सारे गुण भरे होंगे। तो देह भान होता है, लेकिन देह अभिमान नहीं होता है। तो इस समय आत्मा को देह भान से भी मुक्त होना है, तभी बाबा कहता है बच्चे देह तथा देह के सभी संबंध भूल, अपन को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। देह को भूलने के लिए कहता है। तो देह भान से जैसे देह भान आया, पांच कमियां कहो, अवगुण कहो, तुरंत प्रकट हो जाते। जैसे पांच विकार देह भान में, देह अभिमान में हैं ही हैं, ऐसे पांच अवगुण तुरंत प्रकट हो जाते हैं। पहला है लगाव, दूसरा है टकराव, तीसरा है प्रभाव, चौथा है अभाव, पांचवा है दबाव, प्रेशर, किसी को अपने अंडर में चलाने का दबाव। ये पांच अवगुण जैसे देह का भान आता है, ये पांच अवगुण तुरंत आ जाते। और दूसरा है दिल शिकस्त। जब दिल शिकस्त होते हैं, कई पुरुषार्थ करके थक जाते हैं, नहीं सफलता मिलती है, या किसी भी कारण से, संग दोष से, या अपने पुराने कड़े संस्कार के कारण दिल शिकस्त होते हैं, तो भी पांच कमियां आती है। पहली बात, वो आत्मा आलसी हो जाती है। दूसरी बात, उदास हो जाती है। आलस्य और उदास। तीसरी बात, सारी गलती दूसरे के ऊपर छोड़ती है, उसके कारण ऐसा है, वो ऐसा डिस्टर्ब करती है, इसलिए मेरा पुरुषार्थ नहीं हो पाता है, दूसरे के ऊपर गलती छोड़ना। चौथा है ड्रामा को उल्टे रूप में यूज करते, ड्रामा को उल्टे रूप में, जो ड्रामा में होगा वो होगा, जो कल्प पहले पद पाया होगा पा लेंगे। और इसके बाद लास्ट है बड़ों की कमी देखना, बड़ों की कमी देखना। अरे इतने बड़े बड़े महारथी हैं, उनके अंदर अभी ये है, उनके अंदर ये है, उनसे तो हम अच्छे हैं, ऐसे अपने को समझ। दिल शिकस्त का है। तीसरा है अपना मीठा मैपन, मैं आत्मा हूं, और आत्मा हूं ये तो अगर प्रैक्टिकल आ गया तो सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा। फिर भी पांच विशेष प्राप्ति है। पहली प्राप्ति, आप निरंतर योगी बन जाएंगे। दूसरी प्राप्ति, आप भगवान के साथ साथ पूरे विश्व की मनसा सेवा कर सकेंगे। तीसरी बात, आपके चलन और चेहरे से सेवा होती रहेगी। चौथी बात, आपके अंदर सर्व दिव्य गुण अपने आप आते रहेंगे। और पांचवी बात है, ऐसी आत्मा बहुत जल्दी बाप समान की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। जिस समय चाहे शरीर के भान से अलग होकर बाप के पास वतन में बैठ सकती है, जितनी देर चाहे बैठ सकती है। इसका बहुत सुखद अनुभव होता है। ये आत्मा का मैंपन आ गया तो अब तीनों मैंपन को कैसे इसको धारण करे, आत्मा के मैंपन को, और वो दो मैंपन जो है उसका कैसे त्याग करें। पहला मैंपन है लगाव देहभान का, लगाव सबसे ज्यादा लगाव। पहली बात तो आत्मा का शरीर के साथ होता है, और शरीर का लौकिक परिवार के साथ होता है। लगाव, पहला लगाव आत्मा का शरीर के साथ, और शरीर का पहला लगाव परिवार के साथ। अब आत्मा हूं इसका अभ्यास तो हर एक बाबा का बच्चा अपने यथाशक्ति पुरुषार्थ अनुसार कर रहा है, लेकिन जो शरीर का लगाव परिवार के साथ है, लौकिक परिवार के साथ, तो घर गृहस्थ परिवार में है। आप देखो 24 घंटा में 23 घंटा आप लौकिक परिवार वालों के साथ रहते हैं, 1 घंटा आप सेंटर पर जाते हैं क्लास करने, तो 23 घंटा वाली बात याद रहेगी या 1 घंटा वाली बात याद रहेगी? सोचो। और परिवार के साथ हमें 24 घंटा रहना ही है, बीमार पड़े तो दवाई है, जो कुछ भी है, मतलब हमारा सब उनके साथ ही है। क्या हम उनको भूल सकते हैं? भूला जा सकता है? पांडव तो थोड़ा नष्टो मोहा होते हैं, फिर भी भूला जा सकता है, क्योंकि 23 घंटा आपको उनके साथ रहना है, बीमार पड़ो तो सेवा वो करते हैं। माताएं क्या समझती हैं? भूल सकते हो आप लोग? बाबा तो कहता है भूलना है, एक बाबा के अलावा दूसरा याद ना आए। लेकिन जब हमें रहना उन्हीं के साथ है, खाना पीना उठना बैठना सोना सब उनके साथ है। अभी भी आप लोग आए हैं, कितनों का कई बार घर की तरफ संकल्प गया होगा। अगर कोई घर में बीमार रहा होगा तो फोन भी किया होगा, क्या ठीक है, तबीयत ठीक है। अब क्या ऐसे में क्या हम उनको भूल पाएंगे? भूलना तो जरूरी है। भूलने का बहुत सहज तरीका बाबा ने बताया है। भूला जा सकता है अगर वो विधि अपना लो तो, सहज है। ये मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी विधि है, बाबा ने अपनाया विधि। लेकिन सिर्फ आत्मा हूं, ऐसे आत्मा हूं हो नहीं जाता है। बाबा ने सिर्फ यही विधि नहीं अपनाई, सबसे पहली विधि अपनाई कि तन मन धन से स्वाहा हुआ। पहली विधि ये अपनाई, तब अशरीरी होने का अभ्यास चला, मन कहीं और नहीं जाए, क्योंकि स्वाहा हो गया तो जाएगा कहां। हम सब क्या सोचते हैं? ये भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, योग में बैठे तब तक आत्मा आत्मा कोशिश किया, योग पूरा हो गया, आत्मा पूरा हो गया, फिर जो रिश्ता था वही रिश्ता हो गया। इसके लिए बाबा ने बताया था कि देखो आपके दो संबंधी है, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। जैसे लौकिक में आपके माता पिता टीचर स्वामी सखा गुरु सब हैं, ऐसे पारलौकिक में अपना मीठा बाप दादा भी, माता पिता टीचर गुरु स्वामी सखा साजन बच्चा सब है। दो परिवार या नहीं? दो परिवार है आपके। अब उसमें हम अभी क्या करते हैं, जिस परिवार को हम ज्यादा महत्व देते हैं वो याद आता है। जिस परिवार को महत्व देंगे वो याद आता है। अब परिवार में रहते हुए बाबा कहता लौकिक परिवार को इतना प्यार से चलाओ, इतना स्नेह से चलाओ कि वो समझे हाँ ये देवी हैं। प्यार भी दो, स्नेह भी दो, सेवा भी करो, करना ही है, लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा, जब सर्व संबंध मेरे साथ है तो पहले मुझे रखो बस। जैसे एक उदाहरण, आप लोग यहां आए हैं और जब वापस आप अपने घर जाएंगे तो हर एक माताएं भाई कुछ न कुछ बाजार से या बाबा के घर से कुछ खरीदारी करते बच्चों के लिए, इनको देना उनको देना चाहिए, ले जाना चाहिए। कहते आबू की यादगार है, बाबा के घर की यादगार है, ले जाना चाहिए। लेकिन मान लो आपने सबका सामान लिया जिसको भी देना था, लेकिन एक सामान कोई किसी के लिए स्पेशल लो, तो जो स्पेशल सामान लिया है वो जैसे आप देखोगे तो जिसके लिए लिया है उसकी याद आ जाएगी या नहीं? इतने लोगों का सामान लिया वो भूल जाएगा, लेकिन जो स्पेशल लिया है वो देखते ही याद आएगा। तो आप क्या करो, आप प्रयोग करके देखो ये बात कितना सहज भी है और कर भी सकते हैं। वो ये है कि आप मान लो मार्केट में जाते हो, सब्जी लेने गए आप। अब जब आप कहते हो कि बाबा भी मेरा सर्वस्व है, तो जो सब्जी आप घर के लिए लेते हो उसमें सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। आप करके देखो, कल बाबा का हिस्सा निकाल दो। आप सेंटर पर पूछ लो, सब्जी चाहिए सब्जी, नहीं तो पैसा, बाबा का हिस्सा पहले निकाल दो। आप देखो जब तक वो सब्जी ले करके जो बाबा के लिए निकाला है, जब तक ले करके आके सेंटर पर नहीं दे दोगे, तब तक वो देख देख कर बाबा की याद आती रहेगी या नहीं? कितना सहज विधि है, सिर्फ एक ही चीज नहीं, ऐसे आप कुछ भी करते हो, आप देखो कहते हो बाबा हमारा बेटा है, कहते हो। अब आप अपने बेटे के लिए स्कूल की फीस भी देते हो, यूनिफॉर्म भी सिलाते हो स्कूल का, जो कुछ भी है, लेकिन जब बच्चे के लिए स्कूल की फीस देते हो तो क्या तुरंत संकल्प आता है कि मीठा बाबा भी हमारा बेटा है, इस फीस में पहला अधिकार उसका है? क्या उसके लिए निकालते हो? तो जब उसको अपना बेटा माना ही नहीं है तो काहे को याद आएगा आपको? फिर फिर जबरदस्ती बैठकर योग लगाते हैं और लगता ही नहीं योग। योग लगाने की चीज नहीं है, योग प्यार की चीज है, समर्पण की चीज है। गोपियां भगवान के प्रति समर्पण थी, समर्पित थी, दिल भगवान के पास था। लगाना तो उनको पड़ता है जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है लेकिन जबरदस्ती जोड़ रहे, वहां मेहनत करनी पड़ती है। यहां तो हमारा रिश्ता है, आज से ये पक्का कर लो कि कुछ भी करना है, स्कूल की फीस देना है, उसमें सबसे पहले बाबा के लिए फीस निकालेंगे पहले, और वो जो फीस के लिए पैसा निकाला है वो जब तक लाकर के सेंटर पर बहनों के हाथ में या बाबा की भंडारी में नहीं डाल दोगे, बाबा याद आता रहेगा या नहीं? है या नहीं, होगा या नहीं होगा, है ना? ये बात पक्की करो। दूसरी बात, आप स्कूल में बच्चे के लिए यूनिफॉर्म सिलाते हो, जो स्कूल की ड्रेस है, क्या उस समय संकल्प आता है कि भगवान भी हमारा बच्चा है, सेंटर पर बहने हैं, उनके लिए भी साड़ी ब्लाउज दें? आता है संकल्प? नहीं ना, क्योंकि बहने अपनी नहीं है, वो सेंटर की है, आश्रम की है, और ये बेटा अपना है। अगर इतनी दूरी रखोगे तो बाबा कहां से याद आएगा? इसलिए आज से ये पाठ पक्का करो कि कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, पहले बोलो, पहले बाबा, पहले बाबा। कुछ भी करो पहले बाबा, फिर आप देखो कि कैसे भगवान आपके आगे पीछे नाचता रहता है। आपको भगवान को नहीं याद करना पड़ेगा, भगवान आपके पीछे पीछे घूमेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को आपने अपने बस में कर लिया, बांध लिया है। गोपियों के पीछे पीछे दिखाते भगवान घूमता था। ठीक है, ठीक है, ये बात ठीक है, पक्का है तो हाथ उठाओ करेंगे सब। एक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलो, महाराष्ट्र का जोन महान है, महान कर्तव्य करके दिखाएगा। कल से शुरू करना, जो भी बाजार में जाना खरीदारी करने, सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकालना। तो इससे आप लगाव से मुक्त हो जाएंगे। आप परिवार में रहते हुए, मान लो आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, अब रिश्तेदार को अच्छी तरह से खिलाना, खातरी करना, ये बहुत जरूरी है। हम भगवान के बच्चे हैं। लेकिन जब आप बना रहे हो तो इस स्मृति से नहीं बनाओ कि फलाने रिश्तेदार के लिए बना रहे। हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार भगवान है। जो भी रिश्तेदार आया है वो हमारा बाबा है। हम बाबा के लिए बना रहे हैं। पहले मीठा बाबा खाएगा, फिर हम सब भोग के रूप में सब खाएंगे। आप देखो इस तरह बना करके इससे डबल फायदा प्रैक्टिकल देखेंगे। एक तो ये कि खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा, दूसरी बात अगर आप रिश्तेदार की याद में खाना बनाओ, खाना अच्छा बना, कहेंगे आज भाभी ने या जिसने भी है बहुत अच्छा खाना बनाया, बड़ा टेस्टी बनाया है। अगर बाबा की याद में रहकर बनाया होता तो क्या बोलते, आज खाने में कुछ अजब किस्म का स्वाद है, लगता है आज इन्होंने कुछ भगवान को ज्यादा याद किया है। फर्क देखो, इसलिए आप करो सब कुछ लेकिन पहले बाबा। इतना ही नहीं, कुछ भी करो, आप क्लास से उठोगे तो उठते तुरंत उठ नहीं जाओ, एक सेकंड मीठा बाबा क्लास पूरा हुआ चलो मेरे साथ, बस इतना संकल्प करो और बाबा की उंगली पकड़ लो या उंगली पकड़ा दो, चल पड़ो साथ साथ, देखो क्या मस्ती जीवन होगा, कितना सुखमय जीवन होगा। व्यर्थ देखने सुनने बोलने सबसे ऑटोमेटिक बच जाएंगे। बिस्तर पर सोने जाते हो ऐसे नहीं जाके चार्ट देकर और सो जाओ, बिस्तर पर जाओ एक आधा मिनट भी, एक मिनट भी बिस्तर के आगे खड़े हो करके मीठे बाप दादा आपके लिए बिस्तर लगा दिया है, अभी आप आ जाओ, ये बिस्तर आपका है, आप इस पर विश्राम करो, हम भी आपकी गोद में विश्राम करेंगे। ऐसे आवाहन करके फिर आप बाबा के साथ सो जाओ, देखो उसका सुख। यही यादगार भक्ति मार्ग में हर एक चीज का आवाहन दिखाया है। कुछ भी करते हैं तो देवताओं का आवाहन करते हैं। ये आपका यादगार, तो पहले आप ऑटोमेटिक लगाव से मुक्त हो जाएंगे। देखते हुए साथ रहते हुए भी बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहेगी। दूसरा है टकराव। ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मणों का आपस में हिसाब किताब बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि 84 जन्म ज्यादातर हम आप सब साथ में ही रहे हैं, थोड़ा सा अलग बिछुड़े हैं, बाकी साथ में रहे। तो हमारा आपका हिसाब किताब बहुत ज्यादा है, इसलिए टकराव होना स्वाभाविक। एक उदाहरण देते हैं कि हमारा हिसाब किताब आपस में है, उसका उदाहरण आप लोग आए हो। अभी कोई भी टीचर बहन, कोई भी एक स्टूडेंट को दादी से स्पेशल मिलाए, टोली दिलाए, उनसे बातचीत कराए और आपको ना पूछे, आपकी क्या हालत होगी? समझ सकते? और वहीं अगर वही टीचर एक अज्ञानी वीआईपी को ला करके दादी से मिलाती, टोली खिलाती, तो आप खुश होते। अज्ञानी मिल रहा है तो खुश हो रहे हैं और अपना परिवार मिल रहा है तो ऊपर नीचे पसीना निकल रहा है। यह है हिसाब किताब, और कारण नहीं है, हिसाब किताब। अब ये हिसाब किताब हमें चुकतू करना है। अगर नहीं चुकतू करोगे, कई लोग सेंटरों पर भी होता है, घरों में भी होता है, नहीं बनता है तो लोग सोचते हैं इनसे हम अलग हो जाएं। आप उनसे अलग हो जाओगे, लेकिन हिसाब किताब अलग नहीं हुआ है। हिसाब किताब है, हो सकता है उसका रूप बदल जाए, क्योंकि हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा था, टकराव से बचने का साधन है, आप भक्ति में भी, हम आप सब पुराने भगत हैं, इस जन्म में हो सकता किसी ने नहीं किया हो, जब हमारे ऊपर कोई संकट आता था और देवी देवताएं जिसको इष्ट मानते थे उनकी पूजा करते थे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती थी, तो उनको छोड़ नहीं देते थे और विधि पूर्वक करते थे जिससे हमारे ऊपर खुश हो जाए। अब वो देवी देवताएं कौन है जिनकी हम पूजा करते थे, वो कौन है? यही है ना। तो चैतन्य रूप में उनसे लड़ते हैं और मूर्ति रूप से उनकी पूजा करते हैं पत्थर की। अब तो हमें नॉलेज मिल गया है ना कि प्रैक्टिकल यही देवी देवता बनेंगे, पक्का है। इसके लिए बाबा ने कहा था कि ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों का हिसाब किताब खत्म करने का साधन है, चाहे सामने वाला कोयले से भी काला हो, रावण से भी बड़ा दुश्मन हो, कोई भी हो, लेकिन आप उसके प्रति सदा शुभ भावना रखो, शुभ भावना रखो। मीठे बाबा, इस आत्मा का परिवर्तन हो जाए। बाबा, ये आत्मा भी आपसे पूरा वर्षा ले ले। बाबा, इस आत्मा का भी जीवन का श्वास व्यर्थ जा रहा है, बाबा इसका भी कल्याण हो जाए। ऐसे अंदर से रहम के साथ वो जितना आपके उल्टा बोले उतना आप उनको शुभ भावनाओं का दान दो। जितना ज्यादा शुभ भावनाओं का दान दोगे उतना जल्दी आपका हिसाब किताब पूरा हो जाए, और अगर हिसाब का किताब ही पूरा हो गया तो जो टकराते थे वही सबसे बड़े मित्र बनेंगे, अनुभव होगा सबका, बन जाते। और तीसरा है अभाव। अभाव माना कमी। वैसे ब्राह्मण जन्म में कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कमी है, चाहे धन की चाहे किसी चीज की, आप महाराजा नहीं बनेंगे, साहूकार नहीं बनेंगे, लेकिन जितना शरीर को आवश्यक है उतना बाबा अवश्य देगा। अगर नहीं है तो इसका एक ही कारण है, वो कारण है अभी तक आप फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं बने हैं। फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं बने। फुल कास्ट ब्राह्मण अप्रापत कोई वस्तु नहीं, कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने। फुल कास्ट ब्राह्मण किसे कहते? ब्राह्मण माना हमारा नया जन्म है, दुनिया वही है, परिवार वही है, उसी में से नया जन्म है। जब कोई मर के नया जन्म लेता है तो तीन बातें बदलती है। एक, परिवार बदलता है, दूसरा स्थान बदलता है, तीसरा धर्म बदलता है। जब मर के कोई जन्म लेता है तो हम शूद्र से मर के ब्राह्मण बने, हमारा तीनों बदला है। पहली बात, हमारा माँ बाप भाई बहन सब बदल गया, हमारा सब कुछ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है, सर्व संबंध उससे है ना ये। लेकिन सारे दिन के अंदर देखो, सारे दिन में आप लौकिक संबंधी को, जो भी लौकिक संबंधी है, उनको आप किस दृष्टि से देखते हो? बेटी को बेटी समझ के देख रहे हो ना, बेटा को बेटा समझ के देख रहे हो ना। अगर बेटी समझकर देख रहे हैं या कोई भी रिश्ता, तो क्या किसी बीखे को बेटी होती है क्या? उस समय आप ब्राह्मण हैं या पास्ट जीवन वाले हैं? अगर आप पास्ट जीवन वाले हैं तो ब्राह्मण नहीं हुए, तो आप के जीवन रूपी भंडारी में कमी रहेगी ही रहेगी। क्योंकि ब्राह्मण बने ही नहीं। इसलिए लौकिक के रिश्ते को देखना उसी रिश्ते से है, लेकिन अंदर भावना हो कि ये भी आत्मा शिव बाबा का बच्चा है या ये भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। जैसे आप लोग क्लास में जाते हो, टीचर बहन होती है, आप जानते हो ये बहन फलानी है, जानते हो, लेकिन भावना उस समय क्या होती है? टीचर है, महानता की भावना होती। ऐसे ही लौकिक में रिश्ता जो है रिश्ता है, लेकिन अंदर की भावना हो ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है या आत्मा है। इससे क्या होगा, अपनापन नहीं रहेगा, और अपनापन न रहने से श्रीमत की अवज्ञा नहीं होगी, नहीं तो फिर हम मोह में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, कई बातें हो जाती है, श्रीमत की अवज्ञा हो जाती है। जानते हैं बच्चा गलती करेगा दो थप्पड़ मार भी देंगे, ये सब इसलिए होता है अपनेपन के कारण। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा फलाना है। इसके बाद दूसरा, पहला संबंधी बदलते हैं, दूसरा स्थान बदलता है। आप लोगों का स्थान बदल गया, आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है? साकार में मधुबन, सूक्ष्म वतन या मूल वतन, ये तीन हमारा परमानेंट एड्रेस है। लेकिन आप देखो सारा दिन हमें क्या याद रहता है, हम बॉम्बे के हैं, महाराष्ट्र के हैं, आंध्र के हैं, यही याद रहता है ना, फलाने सेंटर के हैं, फलाने यहाँ के हैं, ये याद रहता है ना। ये क्या ब्राह्मण हैं, क्या मरे हैं क्या अभी तक? अगर मरे ही नहीं तो जीने का प्रश्न ही नहीं है, जन्म ही नहीं हुआ। और वैसे भी कहते हैं अगर पास्ट की बात याद आ जाए, पास्ट की पीछे की बात, तो पास्ट को भूतकाल कहते हैं। तो पास्ट माना भूत, कोई ने कोई विकार का भूत सवार हो जाए, अगर पास्ट जीवन में गए तो। इसके बाद धर्म बदलता है, धर्म अर्थात धारणा। अभी भी कई ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं, कई भी, कि जो कहते हैं कि हमें लौकिक दुनिया का रीत रसम तो निभाना ही पड़ता है, क्या करे, संसार में रहते समाज में रहते करना ही पड़ता है। अब आप सोचो, आप भी के हो या कहां के हो? आपको अपनी बात का प्रभाव उनके ऊपर डालना है या उनके प्रभाव से आपको चलना है? कैसे आप प्रत्यक्ष होंगे, कैसे भगवान को प्रत्यक्ष कर पाएंगे? क्या उनकी बातों पर चल करके, क्या समाज की बातों को चल करके? नहीं। इसलिए पहले जीते जी मर के ब्राह्मण बनो। अगर ब्राह्मण बन जाओ तो देवभान का मैपन से मुक्त हो जाओ। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
गुले गुलदार में गुले गुले।